हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 16 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा हरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युक्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण कीर्त तीसरा स्कंद अध्याय 14 जिसका शीर्षक है संध्या समय दिति का गर्भ धारण। कल हमने पढ़ा कि दिति कश्यप मुनि को संतान उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहन देकर कहती हैं कि मेरी सारी बहनों की संतानें हैं तो मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी आप जैसा पुत्र उत्पन्न हो, तो आप कृपया मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए। उसकी इच्छा पूरी नहीं थी क्योंकि गृहस्थ जीवन में संतान उत्पत्ति तो धर्म के अनुकूल है, लेकिन वो समय जो था वो सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दिति अच्छी तरह जानती थी कि असामायिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, कि समय सही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने याचना की कि जब आपातकाल हो या त्रासपूर्ण स्थिति हो तो काल या परिस्थिति का विचार नहीं करना चाहिए। तो वो कह रही थी कि अब क्योंकि मैं बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए आपको समय का नहीं बल्कि मेरा ख्याल करना चाहिए। और आगे श्लोक नंबर 16 ने दिति कश्यप मुनि से कहती है, इति ताम वीरमारीच कृपणम बहुभाषिणी प्रत्याहानो नयन वाचा प्रवृद्धानंग कश्मला इति ताम वीरमारीच कृपणम बहुभाषिणी प्रत्याहानुनयन वाचा प्रवृद्धानंग कश्मला इति ताम वीर इति मन इस प्रकार ताम मन उस वीर हे वीर मारीच मरीची पुत्र कश्यप कृपणम बहुभाषिणी कृपणा मतलब निर्धन बहुभाषिणी अर्थात अत्यधिक बातूनी को प्रत्याह मतलब उत्तर दिया अनुनयन शांत करते हुए वाचा यानी शब्दों में प्रवृद्धांग प्रवृद्ध अत्यंत उत्तेजित अंग कामवासना कश्मलाम दूषित हे वीर यानी विदुर विदुर जी को मैत्रेय मुनि कहते हैं हे वीर इस तरह कामवासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों में शांत किया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई पुरुष या स्त्री कामवासना से ग्रस्त होता है तो इसे पापपूर्ण कलमश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे तो भी उनमें इतनी शक्ति ना थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते जो इस तरह पीड़ित थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवत भक्त की उपेक्षा आत्मसंयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से ही अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे और चूंकि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे अतः उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों से उसे विरत करने का प्रयास किया। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कठोरता के साथ वो मना नहीं कर पाए, चाहते तो कर सकते थे लेकिन ऐसा लगता है कि वो खुद भी अंदर से दुर्बल थे, क्योंकि यहाँ पर विदुर जी को वीर कहा गया। जब तक जीव भगवान का भक्त नहीं बन जाता, जब तक भगवान के साथ प्रेम करने नहीं लगता ना, तब तक कहीं ना कहीं उसके हृदय में काम वासना के प्रति या भौतिक आनंद के प्रति जो आकर्षण है ना वो बना रहता है। ये हमारे लिए शिक्षा है कि जब जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, तो फिर तो यमुनाचार्य जी कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण चरणारविंद नव नव रसन। तो फिर क्या है, भगवान के चरण जब एक बार हृदय में स्थित हो जाते हैं फिर भक्त को उससे ज्यादा और मीठा कुछ लगता ही नहीं है। फिर तो वो कहते हैं तदवधि बत नारी संग स्मरमाणम, जब तो मैं कृष्ण का चिंतन कर रहा होता हूँ
और फिर मुझे कभी अगर गलती से भी किसी नारी के प्रति या फिर स्त्री के प्रति आकर्षण के बारे में सोच भी लेता हूँ, सुष्ठु मुख विकार, फिर तो मैं उस विचार पर भी थूकने लगता हूँ। क्योंकि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर, जब परम दृष्टवा यानी कि आनंद का आकार, सुप्रीम आनंद, परम रसो रसो वैसह रस का सागर कृष्ण जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक तो जीव के हृदय में भौतिक वस्तुओं का आकर्षण बाकी रहता है। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, ईश देहम विदास्यामि प्रियं भीरु यरिच्छसि तस्या कामं न कः कुर्यात्। सिद्धिस्त्रय वर्गिकीयत एष तेहं वेदास्यामि, एष मन यः, ते मन तुम्हारी विनती, अहम में वेदास्याम संपन्न करूंगा। प्रियं अत्यंत प्रिय, हे भीरु हे डरी हुई, यद इच्छसि तुम चाह रही हो। कश्यप मुनि कह रहे हैं, हे मेरी पत्नी, आप मुझे बहुत प्रिय हो, आप भयभीत मत हो। एष ते हम विदास्यामि, मतलब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और तुम जो चाह रही हो वैसा ही होगा। तस्या कामम न कह कुर्य, तस्या उसकी, कामम अर्थात इच्छाएं, न नहीं, का कौन कुर्यात करेगा। सिद्धि अर्थात मुक्ति की सिद्धि, त्रय वर्ग की, तीन, यता जिसने, हे भीरु तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय है उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की तीन सिद्धियों का स्रोत और कौन है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझाएंगे कि मुक्ति की तीन सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। अब ये जो है ना पुरुषार्थ, इसको मुक्ति की सिद्धियां कहा जाता है। वास्तव में मोक्ष जीव का वास्तविक अधिकार है, लेकिन वो उसके जो स्टार्टिंग है वो धर्म, अर्थ और काम है। तो बद्ध आत्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत का माना जाता है, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे सभी प्रकार से अपने पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता है तो वह भौतिक कलमश में अधिकाधिक फंसता जाता है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चित ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है, और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि के लाभ उठाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि बालिकाओं तथा बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सके। बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका का कौमार्य। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा आध्यात्म शिक्षा ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग है। श्री प्रभुपाद जी ने श्लोक में बहुत ही सुंदर बात समझाई है, जैसे कि यहाँ पर बताया, कश्यप मुनि कहते हैं, तस्य कामम न कह कुरियात सिद्धिस त्रय वर्ग की यथा, कि पत्नी के अतिरिक्त और कौन है जो जीव को, जो पति को तीन सिद्धियां प्रदान कर सकती है, मुक्ति की तीन सिद्धियां, धर्म, अर्थ और काम। तो वास्तव में भक्तों, ये किसी का बहुत बड़ा सौभाग्य ही हो सकता है कि उसको ऐसी पत्नी मिले
जो उसे आध्यात्मिक जीवन में सहायता कर सके। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। सब लोग क्या सोचते हैं, हमको इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए
विवाह के बाद भी। लेकिन यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिलती है तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता है तो वह भौतिक कलमशों में अधिक फंसता जाता है। एक आज्ञाकारी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। यहाँ श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पत्नी का धर्म है कि वो पति को हर तरह से सुख पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि यदि पति संतुष्ट है अपने जीवन से तो फिर वो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा। फिर वो एक अगर भौतिक जीवन में उसको आनंद नहीं है तो फिर क्या होगा, वो आध्यात्मिक जीवन के विषय में जीव सोचता नहीं है क्योंकि इंद्रिय तृप्ति उसका लक्ष्य होता है। लेकिन अगर पत्नी अच्छी मिल जाती है तो वो सहायता करती है, और अगर वो अपने इस बौद्ध जीवन में कुछ विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो भौतिक कलमश में अधिकाधिक फंसता है, फिर उसको निकलने का समय नहीं मिलता। लेकिन आज्ञाकारी पत्नी से क्या उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग देगी। उसकी अगर भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उसको भौतिक सारे सुख यदि वो प्राप्त हैं तो फिर वो जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सकेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ एकदम रिलैक्स है, फिर अब हमारे जीवन का मकसद भी तो हमें ढूंढना है कि मनुष्य क्यों, वरना तो लाइफ को कंफर्ट जोन में लाने के लिए जीव बस और आनंद चाहिए और इंद्र तृप्ति चाहिए और। लेकिन पत्नी यदि आज्ञाकारिणी और समझदार है तो पति को समझा सकती है कि अब हमको भगवान की भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ करना है। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील, अब देखो पति पहले से ही अगर प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उस कार्य में हाथ बटाती है, फिर तो पत्नी ना जो भी वो कार्य करेगा तो उसमें साथ। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी बोलते हमारा प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए, शुरू से ही पति को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य में ज्यादा से ज्यादा शास्त्र अध्ययन, कि किस तरह से हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन का बताया गया कि किस तरह से गुजारना, और जो पत्नी है मतलब जो लड़कियां हैं, बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य और बालिका का कौमार्य, यानी कि कौमार अवस्था में उसको किस तरह से मतलब भक्ति बताई जाए, किस तरह से भगवान के विषय में बताया जाए। तो आज्ञाकारिणी पत्नी तथा आध्यात्मिक शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं, कौन, आज्ञाकारी पत्नी हो और ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य जो आध्यात्मिक शिक्षित हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, ऐसा पति जब मिलते हैं तो ही एक वास्तविक उत्तम जीवन स्टार्ट होता है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं सर्वाशमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनारण वमत्येति जलया नैर्यथारणवान् सर्वाश्रमान्। सर्वमन समस्त आश्रमान मतलब सामाजिक व्यवस्थाओं या आश्रमों के उपादाय पूर्ण करके स्व आश्रमेण स्वमन अपने आश्रमेण मतलब आश्रमों के द्वारा कलत्रवान अपनी पत्नी के साथ रहने वाले व्यक्ति व्यसन अर्वण संसार रूपी भयावह सागर अत्येति पार कर सकता है। जल याने समुद्र जहाजों द्वारा यथा जिस तरह अर्णवम यानी समुद्र को, अनुवाद, जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है उसी तरह मनुष्य
पत्नी के साथ रहते हुए भाव सागर की भयावह स्थिति से पार हो जाता है। यहाँ मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि कश्यप मुनि अपनी पत्नी को किस तरह से सांत्वना दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं, आप तो तीनों धर्म की प्रदान करने वाली हो और आप तो एक जहाज की तरह हो, जिस तरह से जहाज को में बैठकर हम समुद्र को पार करते हैं, उसी तरह से भाव सागर को पार करने के लिए आपका साथ मैंने मुझे प्राप्त हुआ है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार से मोक्ष के प्रयास में सहयोग करने के लिए चार सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात आश्रम हैं। ये हैं ब्रह्मचर्य या पवित्र छात्र जीवन, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्रगति के लिए सभी उस गृहस्थ पर निर्भर हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। यह सहयोग जीवन चार सामाजिक व्यवस्थाओं तथा चार आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य करते रहने के लिए अति आवश्यक है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भले चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, निर्भर किस पर होता है? गृहस्थ के ऊपर, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं ब्रह्मचारी, उनका पालन कौन करता है? माता पिता। जो वानप्रस्थ में चले गए हैं, माता पिता जो बड़े हो गए, उनका पालन कौन करता है? गृहस्थ। और जो सन्यासी हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं करते, उनका पालन कौन करता है? गृहस्थ। तो सब लोग जो है वो गृहस्थ पर निर्भर है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह संयोग जीवन की चार सामाजिक व्यवस्थाओं तथा चार आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के सुचारू रूप के कार्य करते रहने के अति आवश्यक है। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्यता जाति प्रथा कहलाती है। अपनी पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के भरण पोषण की भी। गृहस्थियों को छोड़कर अन्य सबों की से आशा की जाती है कि वे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहें। अतः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी को जीविका कमाने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, इसलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्रित करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। समाज के अन्य तीन वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। अंततोगत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर से सहज ही पार कर जाता है। शीला प्रभुपाद की जय। तो शीला प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि बाकी आश्रम जो होते हैं, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यास, उनको तो अपने आध्यात्मिक जीवन की फिक्र करनी होती है, उनको आगे बढ़ना होता है, उनके पास समय नहीं होता है कमाओ फिर घर में जुटाओ ये लाओ वो लाओ, ये सब नहीं। वो तो अपना जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही डेडिकेट कर लिए होते हैं, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी होती है कि सबका पालन करें। और जब गृहस्थ लोग सब ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनको जब दान देता है, उनके उनका पालन करता है, तो वास्तव में वो एक आध्यात्मिक जीवन गुजार रहा है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अंततोगत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आश्रम में होता है, किसी भी वर्ण में होता है, यदि वो उनकी सहायता कर रहा है तो फिर वो आध्यात्मिक रूप से उन्नति हो रही है उसकी और अविद्या के सागर को वो आसानी से पार कर सकता है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, यामाहुरात्मनो ह्यर्धम श्रेयस्कामस्य मानिनि यस्यां स्वदुरमद्यस्य पोमांशरति विच्वरा। याम मतलब जिस पत्नी को आहु कहा जाता है, आत्मनः शरीर का ही मना इस प्रकार अर्धम
यानी आधा, यानी पत्नी को यामाहो आत्मनो ह्यर्धम, यानी हमारे शरीर का आधा अंग माना जाता है पत्नी को, और श्रेयः कल्याण कामस्य सारी इच्छाओं का माननी हे आदरणीय। तो कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आप तो बहुत आदरणीय हो और आप मेरी इतनी सहायता करती हो, और इसी के कारण मैं अपनी, क्योंकि आप मेरी इच्छाएं पूरी करती हो ना, इसलिए आप मेरी अर्धांगिनी हो। और यस्याम यस्याम मन जिसमें स्वधुरम अर्थात सारे उत्तरदायित्व अदस्य सौंप कर, पत्नी इतनी वो सहायता करती है, इतनी वेलविशर होती है अपने पति के लिए, और पत्नी के ऊपर इतना भरोसा होता है कि यस्याम स्वधुरम अदस्य, कि उसके सारे अपने कर्तव्यों को उत्तरदायियों को अदस्य अध्यस्य मतलब उसके ऊपर सौंप देता है, अपने घर के अपना पूरा घर उसको दे देता है, अपनी संतान की जिम्मेदारी उसको दे देता है, यहाँ तक कि वो जो कमाता है उस वो पूरा अपनी पत्नी पर अपने कि तुम्हें किस तरह से अपने घर को मैनेज करना है, क्या क्या करना है, तो वो सब कुछ उसके ऊपर सौंपता है और सारी जिम्मेदारी भी उसको देता है, और स्वयं क्या करता है, पुमांस चरति विज्वरा, पुमांस मना पुरुष, चरति मना भ्रमण करता है, विज्वरा मना निश्चिंत। जब उसको लगता है कि मेरी जो पत्नी है वो तो बहुत आज्ञाकारी है और बहुत सहायता कर रही है, फिर वो बहुत निश्चित हो जाता है एकदम, मतलब उसको टेंशन नहीं रहती कि बस वो है ना संभाल लेगी। अनुवाद, हे आदरणीय पत्नी, आदरणीय पत्नी इतनी सहायता प्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी सारी अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चित होकर विचरण कर सकता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक आदेशानुसार पत्नी को शरीर की, पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वह पति के आधे कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर पांच प्रकार के यज्ञ जिन्हें पंच यज्ञ कहते हैं संपन्न करने का भार होता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सकता है, जो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान होते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, और तब वह अपनी पत्नी को इंद्र तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्र तृप्ति का साधन माना जाता है तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान होता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति में कोई अवरोध आ जाता है तो संबंधों में व्यवधान या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारस्परिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतएव कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रभुत्वता के लिए नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात समझा रहे हैं कि अगर जीव को पता नहीं होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है
तो उसको सिर्फ एक ही बात पता होगी कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इंद्र तृप्ति, और पत्नी मेरी इंद्र तृप्ति की का एक साधन ही है। और फिर उसका जो मुख्य केंद्र होगा वो क्या होगा, सुंदरता, और मेरी काम इच्छा में कोई ना रुकावट ना हो। लेकिन अगर ये दो चीजें नहीं मिल रही हैं तो फिर डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन ये जो हमारा वैदिक संस्कृति बताती है, तो वो विवाह जो है वो इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ी ना किया जाता है। ये तो सीधा सीधा श्री प्रभुपाद जी ने बोला, वास्तव में विवाह तो एक कर्तव्य है जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार, ये तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए है कि जीव की कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिसके कारण वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाए यदि उसकी पत्नी जो है उसके साथ ना हो, तो ये तो एक है ना गलत कार्य। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते कि अतएव कुत्ते तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, कि वरना तो जीव जो है वो अपनी काम इच्छा को पूरा करने के लिए ना जाने किस हद तक नीचे गिर जाए, इसलिए उसको विवाह करने की अनुमति दी जाती है ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके। और आगे कहते हैं, यामाश्रित्येन्द्रिया रातीन दुर्जयानि तिराश्रमय वयम जये महेला भीर दस्योन्दुर गपति यथा। याम यानी जिसको आश्रित्य यानी आश्रय बनाकर इंद्रिय यानी इंद्रियां आरातीन शत्रुगण दुर्जयान जीत पाना कठिन इतरह गृहस्थ जीवन के अतिरिक्त। अब यहाँ श्री प्रभुपाद यहाँ पर कश्यप मुनि कहते हैं कि हमारी वो इंद्रियां जिनको जीत पाना दुर्जयाम बहुत कठिन है, सिर्फ ग्रस्त जीवन में ही ऐसा किया जा सकता है। याम आश्रित्य इंद्रिय आराती दुर्जयान इतरह, ग्रस्त जीवन के अतिरिक्त जिन इंद्रियों को जीत पाना कठिन है, आश्रम अर्थात अन्य आश्रम जो है ब्रह्मचर्य संन्यास और वानप्रस्थ, उन आश्रम में वयम जये महेला भी, वयम मतलब हम, जये मतलब जीत सकते हैं, हेला भी आसानी से उन इंद्रियों को संतुष्ट करके जीता जा सकता है, मतलब उनको संतुष्ट करके हम फिर आध्यात्मिक के विषय में सोच सकते हैं, आसान होता है ग्रस्त के लिए ऐसा। और दस्युन यानी आक्रमणकारी लुटेरों को दुर्गपति किले का सेना नायक किया था, जिस तरह से किले का सेनापति जो होता है आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह से गृहस्थ जीवन में पत्नी की सहायता से उन इंद्रियों को भी आसानी से जीता जा सकता है। अनुवाद, जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव समाज के चार आश्रमों यानी ब्रह्मचार्य ग्रस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से ग्रस्त सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले के लुटेरी मानी जाती हैं। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है, अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप हो जाता है, जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेक अनेक उदाहरण हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भावबंधन का कारण है, इसलिए इन तीन आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा संन्यासों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि यदि ये विवाह संस्कार कितना महत्वपूर्ण है, संसार को या समाज को गलत रीति से यौन संबंध बढ़ाने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर अपनी पत्नी है तो उसके कारण जीव सुरक्षित रहता, उसको कहीं और परेशान नहीं होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर गृहस्थ जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया, लेकिन साथ साथ में ये बताया गया कि गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और सन्यासियों को उत्पन्न करने का के लिए उत्तरदायी है। अगर गृहस्थ जीवन विधि विधानों के अनुसार होगा, आध्यात्मिक रीति के अनुसार होगा, यदि गृहस्थ में रहकर हम, क्योंकि संतुष्ट है इंद्रियां और हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति के कार्यों में धर्म के रास्ते पे रहेंगे, तो वही उन्हीं गृहस्थियों से ही ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी संतानें जन्म लेंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप इतना ध्यान से सुनते हो और कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं इसी तरह से और भी अच्छे तरीके से आप सबकी सेवा कर सकूं, अपनी सेवा और साधना को मैं अच्छे तरीके से कर सकूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।